यशाया अध्याय 33, अशूरों को चेतावनी के साथ अध्याय 33 का आरंभ होता है। यशाया अध्याय 33 पद 1, हाय तुझ नाश करने वाले पर जो नाश नहीं किया गया था, हाय तू विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया था। अशूर जाति बहुत ही अधिक उत्पीड़क जाति थी, वे प्रायः अपने युद्ध बंदियों को अपंग बना दिया करते थे, वे बंदियों की जीभ खींच लिया करते थे, वे उनकी आंखें निकाल दिया करते थे, वे युद्ध बंदियों के शरीर को अपंग बना दिया करते थे, वे बहुत निर्दयी थे। इतिहास में इसका प्रमाण है कि यदि कोई नगर इनके द्वारा घेर लिया जाता था तो वहां के नागरिक समर्पण करने की अपेक्षा सामूहिक आत्महत्या कर लिया करते थे। उनकी बर्बरता के कारण लोग उनसे बहुत भयभीत रहते थे और समर्पण करके और अशूरों के उत्पीड़ना का सामना करने की अपेक्षा वे आत्महत्या करना उचित मानते थे। इस कारण हम मसदा को ही एकमात्र ऐसा न समझे। अशूरों के उदय के युग में इतिहास गवाह है कि अनेक नगरों ने सामूहिक आत्महत्या की है। वे उनके बंदी बनने से उचित तो जान दे देना अच्छा समझते थे। यही कारण था कि यशया ने कहा, हाय तुझ विश्वासघाती पर। यशाया अध्याय 33 पद 1 से लेकर 8 तक, जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं। भोर को तू उनका बुझबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। हुल्लड़ सुनते ही देश देश के लोग भाग गए, तेरे उठने पर अन्य जातियां तितर बितर हुई, और जैसे टिड्डियां चट करती है वैसे ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी, और जैसे टिड्डियां टूट पड़ती है वैसे ही वे उस पर टूट पड़ेंगे। यहोवा महान हुआ है, वो ऊंचे पर रहता है, उसने सियोन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है, और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। देख, उनके शूरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं, संधि के दूत बिलक बिलक कर रो रहे हैं, राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उन पर बटोही अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना, और उसने मनुष्य को कुछ ना समझा। यहां वो यहूदा के उन नगरों का उल्लेख कर रहा है जिनको अशूर बंदी बनाकर ले गए थे, और यहूदा के मुख्य मार्ग अब कैसे उजाड़ है। यशाया अध्याय 33 पद 9 से लेकर 13 तक, पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई है, लेबनोन कुमला गया और उस पर स्याही छा गई है, शारोन मरुभूमि के समान हो गया, बाशान और कर्मेल में पथ झड़ हो रहा है। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। तुम में सूखी घास का गर्भ रहेगा, तुमसे भूसी उत्पन्न होगी, तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी, देश देश के लोग फूके हुए चूने के समान हो जाएंगे, और कटे हुए कटीले पेड़ों की नाई आग में जलाए जाएंगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें अपनी आग में भस्म कर डालूंगा, देश देश के लोग कटे हुए कटीली पेड़ों की नाई आग में जलाए जाएंगे। यरूशलेम वासियों पर अशूरों के विनाश का प्रभाव। यशाया अध्याय 33 पद 14। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी। यदि परमेश्वर की अग्नि ने इस अभिमानी अशूर सेना का विनाश कर दिया तो हम में कौन है जो ऐसी आग में बचा रह सकता है। अशूरों के विरुद्ध परमेश्वर की आग का प्रभाव देखकर पापी लोग भयभीत हो गए और डर गए तथा आडंबरी लोग आतंक से भर गए। जब उन्होंने अशूरों के विरुद्ध परमेश्वर की आग के प्रभाव को देखा, इब्रानियों 12 अध्याय 29 पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों की पुस्तक में ये भी लिखा है, इब्रानियों 10 अध्याय 26 और 27 पद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये परमेश्वर की अग्नि है। परमेश्वर की ये आग हमें जो उसकी संतान है भयभीत करने के लिए नहीं है, क्योंकि पत्रस लिखता है, पहला पत्रस 4 अध्याय 12 पद, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करना कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। परमेश्वर हमारी अग्नि परीक्षा लेता है, परंतु ये शोधन की अग्नि है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारा मैल दूर करता है कि हम शुद्ध हो जाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब हम में अनेक दुर्बलताएं होती हैं। हमारे जीवन में सब प्रकार का मैल होता है। यही कारण है कि परमेश्वर हमें आग में डालता है कि ये सब अशुद्धियां जलकर समाप्त हो जाएं। हमारी परख की जाती है, परंतु हमारी परीक्षाओं और परख में तथा हमारे शोधन में परमेश्वर का अपना उद्देश्य यह है कि हम शुद्ध होकर उसके अनुरूप परिशुद्ध हो जाए। यही कारण है कि मैं परमेश्वर की आग में डाला जाता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। उसकी आग मेरे जीवन में से सब अशुद्धियों से निकालकर मुझे शुद्ध कर रही है। आप पापी हो या मसीह विश्वासी, आप परमेश्वर की आग में हैं। यदि आप पापी हैं तो याद रखें, परमेश्वर की आग भस्म करने वाली और तहस नहस करने वाली है जो आपको संपूर्ण रूप से नष्ट कर देगी। परंतु यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो वही आग आपको शुद्ध करती है कि आपके जीवन की सब अशुद्धियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए। इसका उत्तर है, हमसे कौन इस भस्म कर देने वाली आग में ठहर सकता है। यशाया अध्याय 33 पद 15 से लेकर 17 तक, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, वो चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा। ओह, मैं अपने राजा को उसके वैभव और सुंदरता में देखने को कैसे ललकता हूं। यीशु ने प्रार्थना करते हुए कहा, यूहन्ना अध्याय 17:20, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। 24, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। प्रभु की इच्छा क्या है? कि आप उसे उसकी महिमा में देखें और अपने राजा को उसकी रमणीयता में देखें। हमने तो उसे केवल उसकी नम्रता में ही देखा है, हमने तो उसे घृणा के पात्र स्वरूप ही देखा है, उसका परित्याग देखा है, परंतु वो चाहता है कि हम उसे उस महिमा में देखें जो जगत की उत्पत्ति से पहले पिता के साथ उसकी थी। वे राजा को शोभा में भी देखेंगे। यशाया अध्याय 33:17, और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा, प्रतिज्ञा का देश अर्थात परमेश्वर के राज्य को। यशाया अध्याय 33:18-22 तक, तू भय के दिनों को स्मरण करेगा, लेखा लेने वाला और कर तौल कर लेने वाला कहां रहा, गुम्मटों को गिनने वाला कहां रहा, जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता और जिनकी लड़खड़ाती जीव की बात तू फिर ना देखेगा। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वो विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा अभी उखाड़ा ना जाएगा और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा, वो बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा जिसमें डांड वाली नाव ना चलेगी और ना शोभ्यमान जहाज उसमें होकर जाएगा, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। ये खंड उस महिमामय दिन की चर्चा करता है जब यीशु फिर से पृथ्वी पर आएगा और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा और वो सियोन पर्वत पर से राज करेगा। जब यीशु फिर से आएगा तब भयंकर भूकंप होगा जिसके कारण जैतून का पर्वत दो भाग हो जाएगा और भूमिगत नदी बहकर बाहर जाएगी, जिसका उद्गम यरूशलेम में यीशु के सिंहासन से होगा। उस नदी की दो धाराएं होगी, एक धारा भूमध्य सागर में गिरेगी और दूसरी धारा मृत सागर में गिरेगी, जिसके कारण मृत सागर का पानी निर्मल हो जाएगा और वो फिर मृत सागर ना कहलाएगा। वो मछली व्यवसाय का केंद्र बन जाएगा और एन गेदी के इर्द गिर्द मछियारे जाल सुखाएंगे। एहेस्केल भविष्यद् वक्ता ने इस नदी की भविष्यवाणी दी है कि ये नदी परमेश्वर के सिंहासन से फूट निकलेगी। उसने नदी का बहाव भी दिया है कि वो इतनी गहरी थी कि उसे चलकर पार करना असंभव था और वो मृत सागर की ओर बह रही थी। यशया ने भी अपनी एक भविष्यवाणी में इस नदी का उल्लेख करता है, वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा, वो बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, वो समुद्री जहाजों के लिए होगा। ये नदी यूफ्रेटिस या टिग्रिस की तरह नहीं जहां पर जहाज चलते हैं, परंतु क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। यशाया अध्याय 33 पद 23। तेरी रस्सियां जहाजों के चलने के विषय देखिए वो क्या कहता है। यशाया अध्याय 33 पद 23 और 24। तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ ना रख सकी और ना पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बाटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। कोई निवासी ना कहेगा मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। भजन संहिता 32 का पहला पद। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। लेकिन इससे पहले कि प्रभु का वो महान दिन आए, इससे पहले कि यीशु अपने राज्य की स्थापना करता है, इससे पहले कि वो यरूशलेम में राज करें, पृथ्वी की सब जातियां अति भयंकर रक्तपात देखेंगी। ऐसा रक्तपात जैसा मानव इतिहास में कभी न हुआ हो। अध्याय 34 में भविष्यद्वक्ता इसी रक्तपात को देख रहा है जो मसीह के राज करने के पहले होगा।